हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है दोस्तों, ये खास कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको उन अनसंग हीरोज की कहानी सुनाती हूँ, उन लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे हैं और जिनके बारे में शायद आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि उनकी बातें और उनके काम को आप तक पहुँचाऊँ। ये ऐसे लोग हैं जो मानवता फैला रहे हैं और साथ के साथ सोशल वर्क में अग्रणी होकर कुछ खास कर रहे हैं, न सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए लेकिन हमारे इस खूबसूरत से देश के लिए। सो दोस्तों, आज इस मानवता की राह पर हम चलने वाले हैं नीलू गुप्ता जी के साथ, जो कि फाउंडर नेमसेक क्राफ्टेड विद लव की। सो ये नेमसेक जो एक खास ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ ऐसी चीजें आपके लिए लेकर आता है जो बहुत ही रेयर कला है हमारी, और उस कला को ना सिर्फ ये संजो कर रख रहे हैं लेकिन इसे जीवित भी रख रहे हैं और नए नए आयाम में बदल कर लोगों तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो करेंगे इस खास कार्यक्रम में नीलू गुप्ता जी का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू सो मच भावना फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस कन्वर्सेशन। First of all, hi, hello everyone, all the listeners to 107.8 FM Radio Manav Rachna, and I'm feeling humbled to be a part of this conversation today, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं sustainability के बारे में और humanity के बारे में, environment के बारे में, entrepreneurship के बारे में, and these are not the fancy topics, these are need of an hour. So we should keep talking on these topics, right Bhavna?
जी, तो नीलू जी बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके बना है नेमसेक क्राफ्टेड विद लव। अब क्राफ्टेड तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन ये नेमसेक है क्या, इसको कब एस्टेब्लिश किया और इसके पीछे की कहानी क्या है, जरूरत क्यों आन पड़ी, मैं चाहूंगी हमारे सभी लिसनर्स को आप बताए।
तो नेमसेक क्राफ्टेड विद लव एस्टेब्लिश्ड इन 2018 with a very focused vision, which is traditional is the new modern. And this is our tagline also, and we believe in this tagline, and we really living in this tagline, because initially humne start kiya tha customized products banane se, personalized products banane se, and initially I was working alone single-handedly in this on this venture on all the products. बट हमारा फोकस और विजन यही था कि वी विल बी यूजिंग ओनली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। मतलब हम ट्रेडिशनल क्राफ्ट यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, बट हमारा जो मटेरियल होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इट शुड बी सेफ फॉर एनवायरनमेंट, इट शुड बी सेफ फॉर एवरीवन, एंड इट शुड बी हैंड क्राफ्टेड। तो सबसे बेसिक चीज़ यही थी, और फिर इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली I observed कि इसको हमें थोड़ा सा और स्केल अप करना चाहिए। देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम, और टीम बनाने के लिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ स्किल्ड आर्टिजन्स के साथ कोलेबरेट करूँ, बिकॉज ऑफ कि जो काम हम अकेले कर रहे हैं उसके बजाय अगर वो कुछ स्किल्ड आर्टिजन्स या जो लोग दूर डिस्ट्रिक्ट्स में बैठ के जो कि जनरेशन से ये काम कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल आर्ट पे काम कर रहे हैं, उन्हें अगर हम काम करने का मौका दें, उन्हें अपनी टीम में शामिल करें, और फिर उसके बाद उनसे अपनी डिज़ाइंस पे काम करा के उनके प्रोडक्ट्स को हम लार्जर मार्केट तक पहुंचाएं, तो दैट इज़ द विजन एंड दैट इज़ द मेन थिंग जो कि जहां से नेमसेक स्टार्ट हुआ 2018 में।
सो सबसे पहले तो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जिस कला की ये हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी आर्ट फॉर्म्स हैं जिन्हें आपने अपनाया है, और आप जिस ढंग से इन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं, नए ढंग में बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो कैसे करती हैं आप?
ओके, सो भावना, हमने कुछ रेयर आर्ट फॉर्म्स को अपने प्रोडक्ट्स में इंक्लूड किया है। सो बेसिकली वी क्रिएट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स टू केटर द नीड्स ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन गिफ्टिंग सेगमेंट, इन डे टू डे लाइफ सेगमेंट, इन यूटिलिटी प्रोडक्ट सेगमेंट। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा मेन फोकस है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो इंडिया के हैं उनको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना, बट साथ में उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ स्टाइल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ क्लब करना, उनके साथ फ्यूजन करना। तो द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम कर रहे हैं कि हमने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को लिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, So first we added the art form which is called Pattachitra, which belongs to Orissa particularly.
जी.
And it is very very indigenous art, I must say, because मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जहाँ मैं जब मैंने आर्टिजन से कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया एंड व्हेन आई ट्रैवल टू उड़ीसा एंड जब हमने वहाँ के जनरल लोकल लोगों से बात की, आई गॉट टू नो दैट दे डोंट नो अबाउट द आर्ट फॉर्म, जबकि वो उनके आसपास है, वहाँ के वॉल्स पे उड़ीसा में जगह जगह हर शहर की वॉल्स पे किया हुआ है, इवन पुरी जगन्नाथ टेम्पल पे सब जगह पट्टचित्र पेंटिंग्स की हुई है, बट दे डोंट इवन नेम ऑफ द पेंटिंग, नो अबाउट द पेंटिंग कि इसका नाम क्या है. एंड इट्स हैज अ ब्यूटीफुल नो मोटिव, इट हैज ब्यूटीफुल इंट्रिकेट वर्क, डिटेलिंग वर्क जो आर्टिजन्स वहाँ पर करते हैं उसके ऊपर. It has colorful pattern, nature, and specifically Krishna stories they depict in this art form. So we picked up that art form from Orissa, और हमारा जो main focus था कि हम उस artwork को लोगों तक awareness पहुँचाए कि what is Pattachitra, उसके पीछे की story क्या होती है, वो कितने efforts के साथ बनता है, उसके एक artwork को बनाने के लिए artisan को कितने दिन लगते हैं, क्या क्या मटीरियल हम यूज करते हैं, those kind of awareness we want to spread amongst people. And the second art form which we include in our product, which is Dhokra from Chhattisgarh, and it is also one of the indigenous art form because it has include a lot of intricate processes. So these two rare art form which I include in my product.
सो भाई देखिए दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि पट्टचित्र और भोकरा दो ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं जिन्हें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है. नीलू जी न सिर्फ नेमसेक्स में इन्हें इनकॉर्पोरेट कर रही हैं, लेकिन साथ के साथ कोशिश कर रही हैं कि इन आर्ट फॉर्म्स को जिंदा रखा जाए. और एक तरफ तो ये आर्टिसंस जो है इन्हें रोजगार मिलता रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये आर्ट फॉर्म्स जो बिल्कुल रेयर आर्ट फॉर्म्स है, जो शायद ट्रेडिशनली उस राज्य में पाया जाए, उसे पहुंचाया जा रहा है जन जन तक, जो एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है अपनी कला, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को संजोए रखने का. नीलू जी, अब बड़ा अहम सवाल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट यानी ODOP, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, इसके साथ आप कैसे जुड़ी और किस प्रकार से आपने अपनी टीम को इसके साथ जोड़ा, किस प्रकार से आप अपनी टीम का गठन कर रही है, मुझे जरूर बताइए.
बिल्कुल भावना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP इज एन इनिशिएटिव विच इज स्टार्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट इनिशियली. एंड दिस इनिशिएटिव इज एम्ड टू फॉस्टरिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री. सो वहाँ पर जितने भी लोकल आर्टिजन या लोकल प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जो वहाँ से आते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनको ऊपर कैसे लाया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उनको ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, दिस इनिशिएटिव वर्क्स फॉर दैट ओनली. एंड ग्रेजुअली फिर ये पूरे पैन इंडिया में अप्लाई कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और नाउ दिस ODOP इनिशिएटिव हैज आइडेंटिफाइड अ टोटल ऑफ 1,000+ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 800 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री. तो द मेन एम कि हर एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन्होंने टैग किया है, एंड दे सेलेक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एंड अ पर्टिकुलर ब्रांड हु आर प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट. सो वी आर द ब्रांड हु आर प्रमोटिंग पट्टचित्र फ्रॉम पुरी, सो दैट इज टैग फ्रॉम पुरी पट्टचित्र, एंड द अदर वन इज ढोकरा विच इज टैग फ्रॉम छत्तीसगढ़. So we are the brand who is promoting these two regional products, regional art forms. So we are working for this initiative as a social entrepreneur, you can say, to generate more opportunity to enabling bigger market for local artisans. So we work for this initiative by tapping up bigger, larger, customer segment, and not only in the domestic market, but we are trying to bring awareness in the global market as well.
नीलू गुप्ता जी, आप मुझे बताइए, बड़ा मुश्किल होता है अपनी कोई भी सांस्कृतिक धरोहर को, जो कि कला है या फिर कोई कल्चरल चीज है, उसे फिर से संजोना, क्योंकि ना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। किसी भी आर्टिसन को मोटिवेट करेंगे तो आर्टिसन कहेगा इसकी मार्केट तो है नहीं, तो मैं इस आर्ट फॉर्म का काम क्यों करूं, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा आसान वो होगा जो समय की डिमांड हो। और आज के जमाने की अगर मैं बात करूं तो आज के जमाने में हम जहां पर ग्लोबल चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, वहां क्या आपको लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है कि आप इस प्रकार से इस पूरी लॉस्ट हेरिटेज को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिसंस को?
बिल्कुल बिल्कुल, चैलेंजिंग तो है। देखिए, चैलेंजिंग एवरी वर्क, एवरी टास्क इज चैलेंजिंग। आई थिंक जब भी कोई आप ऐसा कुछ काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने ही पड़ते हैं। एंड इन दिस टास्क, जहाँ पर हम आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं जिनको सिर्फ काम करना आता है, दे डोंट नो इवन द मार्केट में क्या हो रहा है या फिर डिमांड क्या है एक्चुअल में, उनको वो चीज़ें समझाना जाके समटाइम्स बहुत सारा एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जो डिज़ाइंस वो जनरेशन से बना रहे हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व कि जहाँ पर अर्बन मार्केट में जो कस्टमर बैठा हुआ है दे डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ डिज़ाइन, तो उसमें उनको थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। सपोज कि हम जब कॉरपोरेट क्लाइंट्स की बात करते हैं तो कॉरपोरेट क्लाइंट्स डजंट वॉन्ट एनी स्पेसिफिक रिलीजन स्पेसिफिक गिफ्ट।
यस,
सो वी हैव टू मेक देम मेक दिस आर्टिजंस अंडरस्टैंड कि भाई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं, आपको वही मोटिव्स रखने हैं, वही ट्रेडिशनल आर्ट बनाना है, प्रोसेस भी वही रहेगी, बट थोड़ा सा डिजाइन जो है वो आप थोड़ा चेंज करके बनाइए। सो दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग समटाइम्स। और जो दूसरा चैलेंज हमें आता है वो दूसरा आता है कस्टमर एक्विजिशन पे, कि जहाँ पर कस्टमर के दिमाग में एक थॉट बना हुआ है कि भाई हमें तो इस बजट का ही एक सामान लेना है, यू नो दे आर वेरी बजट सेंट्रिक कि हमें इतने बजट तक के आप क्या दे सकते हैं, तो वहाँ पर जो एक कॉस्ट को बैलेंस करने वाली जो चीज़ है वो चैलेंज हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, उनको उस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के बारे में कन्विंस करना कि नहीं आप ये रखिए अपनी डे टू डे लाइफ में रखिए, आप इसको गिफ्टिंग में इनकॉर्पोरेट कीजिए, दैट काइंड ऑफ यू नो उनको कन्विंस करना वो बहुत बड़ा चैलेंज एक जो हम फेस कर रहे हैं। बट इट्स लाइक वी आर इंजॉइंग दिस काइंड ऑफ चैलेंज। एंड सीरियसली जब हम कस्टमर से बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, वी रियली एंजॉय दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन की कैसे उनको हम अपनी स्टोरीज बताते हैं, आर्टिजन्स कितनी मेहनत कर रहे हैं या इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट के बारे में आप खुद जानिए, अपने इंडिया के सांस्कृतिक धरोहर या हेरिटेज क्राफ्ट को आपको खुद बढ़ावा देना चाहिए, तो उस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज वेरी 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 एंजॉयबल।
और नीलू जी, अब जो सवाल उठता है वो ये है कि देखिए, जैसे आपने कहा, मुझे प्रैक्टिकली मैं ये समझ पा रही थी कि जब आप आर्टिसंस को समझाती हैं कि कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए या बिजनेसमैन्स को क्या चाहिए, तो उनके लिए अपने अंदर ये बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक बड़ी ट्रेडिशनल फॉर्म है और सदियों से वो इसी प्रकार करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यंगर जनरेशन है, अब वहां पर जो यंगर जनरेशन है, क्या वो इसी पद्धति को अपनाना चाहती है और क्या वो यही चीजें सीख रही हैं या वो नए आर्ट फॉर्म्स भी सीख रहे हैं? और जब हम बेचने की बात करते हैं, सो एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि हम ये खूबसूरत कहानियां लोगों को बताते हैं कि ये हमारे भारत की धरोहर है या ये वो कला है, लेकिन जब पैसा खर्च करने की बात आती है तो लोग ये सब भूल जाते हैं, उन्हें कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जो सस्ती भी हो, टिकाऊ भी हो। सो कितना बड़ा मार्केट हमारे पास है और किस प्रकार लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं?
सो जब फ्यूजन की बात आप कर रहे हो कि ये जो आर्टिजन्स हैं उनकी जो नए जनरेशन है वो इस पे काम करना चाहते हैं, बिल्कुल काम करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ सालों से इसमें जो हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो गवर्नमेंट के बढ़ावा देने से जो बूम आया है उससे उन लोगों को दिख रहा है कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज सही जगह पे सही यू नो कनेक्ट करने की बात एक आती है, तो जहाँ पर हम एज अ ब्रांड एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर आर्टिजन्स के साथ कनेक्ट करते हैं और जब हम उनको समझाते हैं कि जो उनके न्यू जनरेशन है कि उनको समझाते हैं कि भाई आपको मोटिव्स वही रखने हैं, आपको डिज़ाइन वही रखना है, आर्ट फॉर्म वही रहेगा, हम उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टू यू नो कीप इंटैक्ट दैट एसेंस ऑफ दैट ट्रेडिशनल हेरिटेज क्राफ्ट, बट हम उसका जो मटीरियल है उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पटचित्र जो ट्रेडिशनली बनाया जाता है उस वो कपड़े पर बनाया जाता है, सिल्क क्लोथ पे, बट हम हमेशा उसको सिल्क क्लोथ पर बना के उसको अर्बन कस्टमर को नहीं दे सकते. सो दे वांट सम काइंड ऑफ अलग अलग, यू नो, ऑफिस यूटिलिटी भी चाहिए उनको, गिफ्टिंग भी चाहिए उनको, वॉल डेकोर भी चाहिए. तो इस तरह की चीजों के लिए हम उनके साथ जो मटीरियल होता है, जो बेस मटीरियल होता है, उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. जैसे कि हम वुड पर वो काम करते हैं, हम उसको कैनवस पर करते हैं, हम उसको अलग अलग मटीरियल के साथ करते हैं, बट टू कीप दैट आर्ट फॉर्म इंटैक्ट, ताकि उसका जो एसेंस है वो वहीं पे रहे. तो इस तरीके से हम आर्टिजन्स को थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं कि आप इस तरीके से मटीरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, आर्ट फॉर्म को कहीं नहीं हिलाना है. सेकेंड थिंग जो आपने पूछा कि या व्हाट वाज द क्वेश्चन,
कि जब हम आर्टिसंस को, नए जितने भी हमारे आर्टिसंस हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें ये नए आर्ट फॉर्म, हम आर्ट फॉर्म पुराना है तरीका नया है, जब ये सिखाने की कोशिश करते हैं तो क्या वो जल्दी से अडेप्ट कर पाते हैं और क्या हमें एक बड़ा मार्केट मिल पाता है?
बिल्कुल, अडेप्ट तो वो बहुत जल्दी करते हैं, बिकॉज नई जनरेशन है, थोड़ा समझती भी जल्दी है और अडेप्ट भी करने को रेडी है. और अभी जब उनको अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं इसमें काम में, तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू अडॉप्ट दिस इजीली, और वो हमारे लिए काम भी कर रहे हैं. एंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि वी आर टैपिंग नॉट ओनली डोमेस्टिक बट द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो. सो वी आर राइट नाउ टैपिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, PSU एंड कॉरपोरेट कंपनीज. सो इट्स अ बिगर मार्केट. तो जब हम उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे तो दे आर डेफिनेटली वर्क फॉर अस. दे आर वो हमेशा उस अपने जो ट्रेडिशनल जो है, जो जनरेशन से जो काम कर रहे हैं उस पे काम करेंगे, वो कहीं भी उसको छोड़ के जाने के बारे में सोचेंगे.
नीलू जी, आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा जमाना है जहाँ आज आप एक ओरिजिनल फॉर्म लेकर आए जो हैंडीक्राफ्ट है या ओरिजिनल आर्ट है, और अगर मार्केट में उसे थोड़ा सा भी पसंद किया जाता है तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, और सस्ते ऑप्शंस जिसमें कि ड्यूप्लीकेसी आ जाती है, यानी जो चीज हैंडवर्क है उसे मशीन वर्क बना दिया जाता है. सो ये जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करके उसे बनाना, ये हमारी जो ओरिजिनल आर्ट है उसे बड़ा हैम्पर करता है. मुझे बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज है, और ये क्या वाकई हमारी ओरिजिनल आर्ट की जो कला है या फिर जो आर्टिसंस हैं उनके लिए एक सेटबैक हो जाता है?
नहीं, देखिए, डुप्लीकेसी होती है डेफिनेटली, और हर जगह होती है, हर प्रोडक्ट के साथ होती है. व्हेन जब हम कोई डिज़ाइन लॉन्च करते हैं, जैसे कि हमारी कोई पेंटिंग, नई पेंटिंग का डिज़ाइन लॉन्च किया है हमने, सो डेफिनेटली उसका डुप्लीकेसी होने का चांसेस तो रहता है. लेकिन जो हाथ के काम में, जो हैंडक्राफ्टेड वर्क में, जो चार्म, जो वार्मथ, और जो एक माइन्यूट डिटेलिंग दिखाई देती है, वो आपको एक डिजिटल वर्क में शायद नहीं दिखाई देगी. तो जो खूबसूरती या जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन. और दूसरी बात कि आप सबसे बड़ी चीज़ उसके प्राइस टैग से, या जो भी आप उसको, कभी भी जो हाथ का काम है, हैंडीक्राफ्ट है, जो हैंड पेंटेड कैनवस है या हैंड पेंटेड पेंटिंग है, जो एक ट्रेडिशनल हेरिटेज क्राफ्ट है, वो आपको कभी भी बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसकी वो कॉस्टिंग ही नहीं आती. और जहाँ पर आपको जो डुप्लीकेट माल मिल रहा है, या फिर डिजिटल पेंटिंग मिल रही है, उसी का डुप्लीकेट वर्जन मिल रहा है, डेफिनेटली उसके प्राइस टैग में कुछ ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा ही आएगा. सो दैट इज़ द वन थिंग दैट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल एंड द रियल वन. एंड द अदर थिंग की, ठीक है, डुप्लीकेट तो लोग करते हैं, करने वाले, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ. जब मैं एक अपने कैनवस में हम काम कर रहे थे, मुझे यहाँ किसी ने बोला कि ये तो हम आपको डिजिटली बना के दे देंगे, आपको एक दिन में 100 पीस निकाल के दे देंगे. तो मैंने उनको बोला कि नहीं, हमको ऐसा काम नहीं करना है. हम वी आर हैप्पी टू वर्क विद आर आर्टिजंस, एंड वी आर हैप्पी विद हैंड क्राफ्टेड थिंग्स. भले ही उसमें टाइम लगता है, एक पेंटिंग को बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 5 to 7 days, बट वी आर रेडी टू डू दैट. और हमें उसमें नहीं जाना है कि हम इसको हैम्पर करके और कुछ और बना के देते. सो दैट इज द एसेंस विच वी आर ट्राइंग टू रिवाइव, कि भाई आप जो खूबसूरती है हैंडक्राफ्टेड पेंटिंग की, वो हमें उसको अलाइव रखना है और उसको प्रिजर्व करना है, उसको आगे बढ़ाना है.
सो दोस्तों, जब बात कर रहे हैं हस्तशिल्प की या फिर हाथ के काम की। सो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म्स होते हैं, वो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल से काफ़ी जुदा होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप कोई यूनिक फॉर्म ले रहे हैं, आप पैसा लगा ही रहे हैं उसे, ना सिर्फ गिफ्टिंग के लिए या अपने घर की साजो सज्जा के लिए ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें, क्योंकि ना सिर्फ वो आपके साथ वो कला रहेगी लेकिन कलाकार की जो कृतियां हैं वो भी रहेंगी। डिजिटल तो एक प्रिंट है, और प्रिंट अगर देखा जाए तो वो किसी के हाथ का नहीं, वन टाइम क्रिएटेड है। सो कहीं ना कहीं आप किसी की भावनाओं को भी साथ लेकर अपने उस गिफ्ट तक ले जाएंगे जो आपने किसी के हैंडीक्राफ्ट का खरीदा है। सो हैंडीक्राफ्ट की हमेशा से ही बात ये होती है कि आप उसको हूबहू वैसा दूसरा नहीं मिलता है। ये खूबसूरत बात है। दो पेंटिंग भी सिमिलर अगर बनाई जाएंगी तो इंसान कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो कर ही देता है। सो ये चीज जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम डिजिटल या टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल की बात करें तो आपको उसकी बहुत सारी सस्ती कॉपीज मिल जाएंगी। सो इसका भी ख्याल रखें। जिस प्रकार से हम हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में ये कहते हैं कि कोशिश करिए कि पायरेसी ना हो, पायरेटेड चीजें आप ना लें, उसी प्रकार हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ड्यूप्लीकेसी से बच के रहिए, क्योंकि तभी आप सही मायने में हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस को वो ड्यू रिस्पेक्ट दे पाएंगे जिसके वो हकदार हैं। नीलू जी, ये आपका बहुत ही खास इनिशिएटिव है जहाँ आप दो खास धरोहरों को, दो आर्ट फॉर्म्स को संजो रही हैं, पट्टचित्र और ढोकरा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फिलहाल आपको सुन रहे हैं और उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि इसी प्रकार से वो भी इसे रेप्लीकेट कर सकते हैं या किसी आर्ट फॉर्म को रिवाइव कर सकते हैं। So, किस प्रकार से किया जा सकता है?
बिल्कुल कर सकते हैं। आपके रुचि के हिसाब से आप अपना, आप यू नो, इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई आर्ट फॉर्म उठा सकते हैं, बिकॉज वी इंडिया इज अ रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज क्राफ्ट्स, नॉट ओनली क्राफ्ट्स बट इन हैंडलूम सेक्टर, इन यू नो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, और भी बहुत सारी ज्वेलरी सेक्टर। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पर आप उसको पिक कर सकते हो और आप उसके उसके, लेकिन ध्यान रखिए कि उसके एसेंस को और जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है उसको बनाए रखते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, यू विल गो ऑन द लॉन्ग वे। और कहीं पे भी उसको डुप्लीकेट मत करिए, उसको जल्दी बनाने के चक्कर में कुछ भी उसका यू नो एसेंस नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग जो आपको ध्यान रखना है। बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं और आर्टिजन्स भी हैं हमारे आसपास। आप राजस्थान जा सकते हो, आप जाके हरियाणा में कुछ देख सकते हैं, आप उत्तराखंड का कोई आर्टवर्क ले सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इंडिजिनस है और जो अगर क्राफ्ट और जो आर्टवर्क के बारे में लोग अभी भी नहीं जानते हैं और जिनको ज़रूरत है ऊपर आने की, तो आप उसके बारे में रिसर्च करिए और आप उनको ऊपर लेके आने की कोशिश करिए। पहले स्टडी करिए उस आर्टवर्क के बारे में, वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है, उसके प्रोसेस क्या है, उसके ओरिजिनल आर्टिजन्स कौन है, और उसके बाद उन आर्टिजन से जाके बात करके या स्टडी करके आप उसको अपने यू नो प्रोफेशनली आप उसको अडॉप्ट कर सकते।
अब बहुत सारी बातें हो गई हैं नीलू जी, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आप हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश देना चाहती हैं?
संदेश बिल्कुल देना चाहती हूँ भावना जी, और बिल्कुल आपकी बात में थोड़ा सा एक और चीज जोड़ना चाहती हूँ कि जी हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं इन आर्ट फॉर्म्स के बारे में, यू विल डेफिनेटली गो इन ऑन द इंटरनेट, आप गूगल करिए, उनके बारे में जानिए, और हमारी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स, और उसमें हम क्या नया कर रहे हैं, हम क्या यूनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यू कैन एक्सप्लोर फॉर दैट आल्सो। और मैं जाते हुए ये कहना चाहूँगी अपने सारे लिसनर्स को कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसे रियल लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या हम उसको पीछे छोड़ देते हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड कि हमारा जो आज का यूथ है, दे शुड एटलीस्ट ट्राई टू अडॉप्ट दोज ग्रीन प्रैक्टिसेस। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मार्केट जाइए, अपना बैग लेकर जाइए, आप कोई भी चीज़ सिर्फ प्राइस टैग, सस्ता प्राइस टैग दे के मत खरीदिए। आप देखिए उसके पीछे वो सस्टेनेबल है भी या नहीं, इन्वायरमेंट के लिए सेफ है भी या नहीं, और क्या वो हमारे इंडिया से आ रहा है या कहीं बाहर से आ रहा है, ये भी ज़रूर देखना है। तो ये सारी चीजें जरूर देखिए, कोई भी चीज आप परचेज करते हैं तो, कि वो हाथ से बना हुआ है तो अगर तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा उसको आप पे करेंगे तो यू विल गेट सम वार्मथ, यू विल गेट सम यू नो लाइफ टाइम मेमोरीज, यू विल गेट सम काइंड ऑफ स्टोरीज बिहाइंड दैट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप कभी भी मतलब बिना सोचे समझे कुछ मत लीजिए. और गिफ्टिंग में भी अगर आप कुछ दे रहे हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर इंडियन क्राफ्ट और उसके बारे में सोच के उसको वो ढूंढ कर वो देखिए. अगर लोगों को गिफ्ट करेंगे तो यू विल स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट आर योर इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज क्राफ्ट.
सो दोस्तों वाकई जरूरी है कि हम अपनी इस धरोहर को अब वापस न सिर्फ रिवाइव करें लेकिन इसे जिंदा रखें. एक तरफ तो हम अमृत काल की बात कर रहे हैं जहां जब हम एक शतक पूरा कर लेंगे अपनी आज़ादी का, तो हम अपने देश को बिल्कुल हूबहू वैसा ही खूबसूरत और अपनी सभी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर के साथ उतना ही एनरिच समझेंगे. लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपनी धरोहर को भी संजोकर रखना है. तहे दिल से धन्यवाद नीलू जी, ढेर सारी बातें आज आपसे की और हमारे सभी लिसनर्स को आपने दी इतनी बेहतरीन जानकारी.
थैंक यू सो मच भावना, मुझे बहुत मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में. And I definitely ask and encourage all the listeners ki vocal for local, please go for vocal for local aur local cheeze khareediye, use promote kariye, uske liye awareness badhaiye.
और दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ. मुझे दीजिए इजाजत, इसी कार्यक्रम में अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास. टिल देन फील गुड फील लाइफ.